आरवी, तुम अपनी शादी से खुश तो हो? अक्षत ने उसकी उदासी की वजह जानने के लिए उसे ये सवाल कर ही दिया, जिस पर आरवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो?
नहीं, बस मैंने तुम्हारे चेहरे पर उदासी देखी, इसलिए पूछ लिया। वैसे तुमने अभी तक मुझे उस लकी इंसान का नाम नहीं बताया जिसको तुम जैसा बेशकीमती हीरा मिला है। अक्षत ने बातों का रुख बदलना चाहा। उसका सवाल सुनकर आरवी कुछ पल खामोश रही, फिर उसने धीरे से कहा, सॉरी, पर मैं तुम्हें उनका नाम नहीं बता सकती। उसकी बात सुनकर पहले तो अक्षत कुछ हैरान हुआ, फिर उसको देखकर मजाकिया लहजे में बोला, क्या हुआ, कोई सुपरस्टार है क्या जो तुम उसका नाम रिवील नहीं कर सकती?
नहीं, सुपरस्टार तो नहीं है, पर फिर भी मैं अभी तुम्हें उनका नाम नहीं बता सकती। वक्त आने पर मैं तुम्हें उनके बारे में ज़रूर बता दूंगी, अभी मेरी अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं।
ठीक है, मैं अब उस दिन का इंतज़ार करूँगा। वैसे जैसे तुम अपने हस्बैंड का नाम छुपा रही हो, आई थिंक वो कोई बड़ा आदमी होगा, तो अगर मेरा अंदाज़ा ठीक है तो तुम यहाँ, मतलब कुछ समझ नहीं आया?
अक्षत अब उलझी निगाहों से उसको देखने लगा था। आरवी ने उसका सवाल सुना तो हल्की मुस्कान के साथ बोली, उन्होंने मुझे काम करने के लिए नहीं कहा, ये मेरा अपना फ़ैसला है जिसमें उन्होंने बस मेरा साथ दिया है, और मेरे इस फैसले के पीछे अपनी पर्सनल वजह है। अक्षत ने आगे कुछ नहीं पूछा। कुछ देर दोनों बात करते रहे, फिर आरवी वहां से निकल गई। शान वहां से सीधे विराज के ऑफिस में चला आया। हैंडशेक करके उन्होंने एक दूसरे को ग्रीट किया, उसके बाद कुछ काम की बातें चली। फिर विराज ने आरवी का जिक्र करते हुए कहा, वैसे तुमने उस लड़की को सजेस्ट किया था ना? सच यार, क्या कमाल की लड़की है, इतनी सुंदर दिखती है और जब नाचती है तो बिजलियां गिरा देती है। उस पर से निगाहें हटाने को दिल ही नहीं करता। मैं तो पहली मुलाकात में ही उस पर फिदा हो गया। ऐसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जितनी प्यारी है उतना ही अच्छा नेचर है उसका। उसके मुंह से आरवी की तारीफ सुनकर शान की बहू एक बार फिर तन गई। उसने विराज को आंखें छोटी छोटी करके उसको घूरते हुए बोला, जिसकी तारीफ में तुम कसीदे पढ़े जा रहे हो, जानते तो हो ना कि वो मैरिड है। शान के एक्सप्रेशन पर विराज ने ध्यान ही नहीं दिया और उसकी बात सुनकर अफसोस जताते हुए बोला, हाँ यार, जानता हूँ कि मैरिड है वो, और इसी बात का तो सबसे बड़ा दुख है कि पहली बार किसी लड़की पर निगाहें ठहरी और वो पहले से किसी और की हो चुकी है। शान को उसकी बातें जरा भी पसंद नहीं आ रही थीं। उसने आंखें चढ़ाकर उसको घूरते हुए सख्त लहजे में कहा, सही कहा तूने, वो पहले से किसी और की हो चुकी है, इसलिए उस पर नज़र मारना बंद कर दे। शान ने लगभग उसको वार्निंग दे दी। विराज में अब जाकर शान के एक्सप्रेशन पर ध्यान दिया और उसकी घूरती निगाहें देखकर अपनी बत्ती सी चमका दी। अरे यार, तू तो बेवजह ही भड़क रहा है। हाँ, ये बात सच है कि मुझे आरवी पसंद आ गई है, पर मुझे अपनी लिमिट्स पता है। मैंने कभी उसको गलत नज़र से नहीं देखा है और ना ही आगे कभी ऐसा होगा। यही बेहतर होगा तेरे लिए, शान ने सख्त लहजे में कहा तो विराज ने सहमते हुए हामी भर दी। फिर उसको देखकर कुछ सोचते हुए बोला, वैसे तूने मुझे बताया नहीं कि तू आरवी को कैसे जानता है? उसके सवाल पर शान ने उठकर खड़े होते हुए रौबदार आवाज में कहा, मैं उसको कैसे जानता हूँ और कैसे नहीं, इसे जानने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखियो कि अगर उस पर बुरी नज़र डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, शान ने उसको वार्निंग देते हुए कहा और तेज़ कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गया। विराज उसके भाव देखकर हैरानी से उसको देखता ही रह गया। फिर उसने अपना सर झटका और काम में लग गया। आरवी जैसे ही एकेडमी से बाहर निकली, रोड के दूसरे तरफ सामने खड़ी गाड़ी को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने दो चार बार अपनी पलकों को झपकाते हुए गाड़ी को देखा, फिर हैरानी से बड़बड़ाते हुए खुद से ही बोली, ये सच है या मेरी आंखों का धोखा? उनकी गाड़ी यहाँ? नहीं, उनकी गाड़ी यहाँ क्या करेगी? और ज़रूरी तो नहीं कि ऐसी गाड़ी पूरी मुंबई में बस उन्हीं के पास हो, कोई और होगा। तू ही आजकल पागल होती जा रही है, हर चीज़ में तुझे उनके वजूद को तलाशने लगती है। उनके बारे में सोचना बंद कर दे, वरना बहुत जल्द तेरा हाल ऐसा हो जाएगा कि तुझे हर जगह बस वही नजर आएंगे। आरवी ने खुद ही को भटकार लगाई और जैसे ही कदम आगे बढ़ी, अचानक ही उसका फ़ोन बज उठा और इसके साथ ही उसके बढ़ते कदम रुक गए। उसने बैग से फ़ोन निकालकर देखा तो स्क्रीन पर मिस्टर मल्होत्रा शो हो रहा था। अभी अभी वो उसके बारे में ही सोच रही थी और उसका फ़ोन आ गया। ये देखकर वो थोड़ा हैरान हो गई। उसने सोचते हुए फ़ोन कान पर लगाया और हेलो तक नहीं बोल पाई थी कि दूसरे तरफ से शान की कर्कश आवाज़ आई, अपने लेफ्ट साइड देखो। आरवी ने उसकी बात सुनी तो उसने चौंक कर बाईं तरफ मुड़कर देखा तो एक बार फिर वही ब्लैक कार उसके सामने थी। आरवी को अब कुछ शक होने लगा था। वो आंखें बड़ी बड़ी गाड़ी को देख ही रही थी। अगले ही पल गाड़ी का मिरर नीचे हुआ और आरवी के सामने शान का चेहरा आ गया। शान ने अपनी आंखों पर चढ़े ब्लैक गॉगल्स हटाकर उसको देखा और इसके साथ ही आरवी के कान में एक बार फिर शान की आवाज़ पड़ी, कम फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू। आरवी ने उसकी बात सुनी तो हैरानगी से आंखें फाड़े उसको देखने लगी। उसको अब भी वहीं खड़ा देखकर शान ने अब हिचकिचाते हुए उसको आने को कहा तो आरवी ने हड़बड़ाहट में उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। वो दूसरे तरफ जाकर खड़ी हुई तो शान ने दरवाज़ा खोल दिया। आरवी झट से अंदर बैठ गई और इसके साथ ही कार आगे बढ़ गई। शान सामने देखते हुए ड्राइव कर रहा था
और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वहीं आरवी अब भी उलझी हुई सी कभी उसको तो कभी विंडो से बाहर देख रही थी। कुछ देर तक तो शान भावहीन सा ड्राइव करता रहा, फिर उसने सामने देखते हुए कहा, कुछ कहना है तो कहो, ये बार बार मुझे देखने से तुम्हारे मन में चल रहे सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे। आरवी जो अभी बाहर देख रही थी, शान की आवाज सुनकर उसने चौंक कर उसके तरफ देखा तो वो अब भी सामने देख रहा था। आरवी की उलझी परेशान निगाहें एक बार फिर शान पर ठहर गईं, पर उसने अब भी कुछ नहीं कहा। कुछ देर शान शांति से उसकी निगाहों को खुद पर महसूस करता रहा, फिर उसने निगाहें घुमाकर उसको देखते हुए गंभीरता से कहा, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है बेझिझक पूछो, यूं खामोश रहकर खुद को परेशान करने से तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे। आरवी ने अब परेशान निगाहों से उसको देखते हुए कहा, वो आप वहां कैसे, मतलब आपको तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था, फिर यहाँ अचानक। स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक एंड कॉमेंट जरूर करें।